मुख्य समाचारों में न्यू साउथ वेल्स में 18 नए स्थानीय अधिग्रहित कोरोना वायरस मामले, राज्य और टेरिटरीज द्वारा फैलते हुए कोरोना वायरस के प्रकोप पर प्रतिक्रिया और अधिक नियम और लॉकडाउन लागू, और भारत में जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में स्पेशल पुलिस अधिकारी की हत्या। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। न्यू साउथ वेल्स प्रीमियर का कहना है कि राज्य एक चुनौती का सामना कर रहा है। वो जनता को अपने 2 सप्ताह के लॉकडाउन के दौरान सुरक्षित रहने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। राज्य में 18 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे बोंडाई क्लस्टर 130 तक पहुँच गया है। ग्लैडिस पेरिजिक्लियन ने लोगों को याद दिलाया है कि पिछले दिनों की तुलना में नए संस्करणों में गिरावट के बावजूद मामलों की संख्या बढ़ने की संभावना है।
But it also requires everybody in the system to do the right thing. Now, that is the challenge we have. The rules are there. We know what it takes to keep people safe. We know what it takes to make sure we do our best in containing the virus. But we also rely on people doing the right thing.
लॉकडाउन जोन में लोग आवश्यक सामान खरीदारी, व्यायाम, चिकित्सा या देखभाल के कारणों के लिए ही घर से बाहर निकलने के लिए सक्षम हैं। टॉप एंड में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार के कारण नॉर्दर्न टेरिटरी के मुख्यमंत्री लॉकडाउन को 72 घंटों के लिए और बढ़ा रहे हैं। कल से एक और सकारात्मक मामले का पता चला है। इससे तनामी रेगिस्तान में एक खदान स्थल से जुड़े कुल प्रकोप की संख्या 7 तक हो गई है। सरकार ने पहले ही सप्ताहांत में एक स्नैप लॉकडाउन घोषित कर दिया था, जिससे अधिकारियों ने कहा था कि उन्हें प्रसार को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी होगी। माइकल गनर का कहना है कि एक्सपोजर साइट्स को बताया गया है और डार्विन में बफ क्लब जनता के लिए सबसे बड़ा जोखिम है।
That means for the Darwin, Palmerston, Darwin rural areas, the lockdown has been extended to 1 PM on Friday. I am really sorry about this, but as I will explain, it is absolutely necessary. The reality is we are not out of the woods yet.
दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के नेता का कहना है कि नवीनतम कोरोना वायरस का प्रकोप राष्ट्र के लिए एक जागृति कॉल है। साउथ ऑस्ट्रेलिया भी आज आधी रात से और अधिक कोविड-19 नियमों को लागू कर रहा है। अधिकारी लोगों को उच्च जोखिम वाली सेटिंग में मास्क पहनने का आदेश दे रहे हैं। निजी समारोहों में अतिथि संख्या को 150 तक सीमित किया जा रहा है और लाइसेंस प्राप्त स्थानों पर भी घनत्व सीमा नियम यानी डेंसिटी रूल्स लागू हो रहे हैं। प्रीमियर स्टीवन मार्शल का कहना है कि राज्य सकारात्मक स्थिति में है, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी है कि डेल्टा संस्करण बहुत ही संक्रामक है।
Of course, I think that what is happening now around the rest of Australia provides everybody with the motivation that they need to go and have themselves vaccinated when they become eligible.
देश भर में फैल रहे कोविड-19 के प्रकोप के जवाब में फेडरल, स्टेट और टेरिटरी आज एक आपातकालीन राष्ट्रीय कैबिनेट बैठक में हैं। अत्यधिक संक्रामक डेल्टा संक्रमण के नए मामले सप्ताहांत में 4 राज्यों और टेरिटरी में दर्ज किए गए, जिससे लॉकडाउन या कड़े प्रतिबंध भी लगाए गए थे। नेताओं को वेरियंट्स, साथ ही साथ वैक्सीन रोल आउट और स्टॉक के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। विपक्ष के स्वास्थ्य प्रवक्ता मार्क बटलर का कहना है कि लेबर सभी उम्र के देखभाल कर्मचारियों के लिए टीकों का समर्थन कर रही है।
So we think that still the priority of Scott Morrison should be to make sure that the most vulnerable in our community are fully vaccinated as soon as possible. But the rest of the population want access to vaccines as well.
विपक्ष के नेता एंथनी एल्बनीसी ऑस्ट्रेलिया के आसपास विभिन्न लॉकडाउन पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ हद तक फेडरल सरकार को इसकी टीकाकरण रोल आउट प्रक्रिया के लिए दोषी ठहरा रहे हैं। श्री एल्बनीसी का कहना है कि यदि टीकाकरण की दर अधिक होती तो ऑस्ट्रेलिया वर्तमान में देश भर में लागू कोविड-19 प्रतिबंधों से पीड़ित नहीं होता।
Our thoughts are today with all those right around Australia. Scott Morrison had 2 jobs this year. He had to effectively roll out the vaccine and he had to implement a system of national quarantine. He's failed both. And at the special national cabinet being held today, he's got to accept some responsibility rather than just hand off responsibility to the states and territories.
क्वींसलैंड सरकार ने घोषित किया है कि कई क्षेत्रों में 2 सप्ताह के लिए मास्क अनिवार्य होगा, जब तक कि कोई व्यक्ति व्यायाम नहीं कर रहा हो या खाने या पीने के लिए बैठा हो। कल मंगलवार दोपहर 1 बजे से यानी 29 जून से इप्सविच, नूसा, सनशाइन कोस्ट, मॉरिटन, ब्रिस्बेन, लोगन, द लॉकी वैली, सीनिक रिम, गोल्ड कोस्ट, रेडलैंड्स और समरसेट के लिए मास्क नियम प्रभावी होंगे। क्वींसलैंड प्रीमियर एनेस्थीसिया पैलेशे का कहना है कि नियम एक पखवाड़े के लिए लागू होंगे, लेकिन अगर वायरस आगे फैलता है तो राज्य के अन्य हिस्सों में उसका विस्तार किया जा सकता है।
We are monitoring the situation really closely for the next 24 to 48 hours. So if we start seeing any spread of community transmission in New South Wales, especially closer to our border, we will not hesitate to take strong action.
Western Australia के अधिकारियों का कहना है कि एक स्थानीय कोरोना वायरस मामले का पता लगना ये दिखाता है कि COVID-19 कितनी तेजी से फैल सकता है। ताज़ा मामला एक 32 वर्षीय महिला का है जो एक जिम में जाती थी और ऐसा माना जाता है कि उसका किसी अन्य मामले से केवल न्यूनतम ही संपर्क था। कई एक्सपोजर साइट्स को उच्च जोखिम वाले स्थानों के रूप में सूचीबद्ध किया जा रहा है, जहां अधिकारी करीबी संपर्कों की निगरानी और परीक्षण कर रहे हैं। प्रीमियर मार्क मैकॉमन का कहना है कि लॉकडाउन और प्रतिबंध सबसे अच्छा दीर्घकालीन समाधान नहीं है, लेकिन टीके और सुरक्षा उपाय इसका जवाब हैं।
These are incredibly important days. We've seen what can happen when this variant is left to spread unchecked in the community. It's essential that everyone remains vigilant. Government, businesses and the public. If we pull together and do the right thing now, we reduce the likelihood of long drawn out restrictions.
विक्टोरिया के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि देश एक गंभीर कोरोना वायरस स्थिति का सामना कर रहा है, क्योंकि COVID-19 का डेल्टा संस्करण अभी भी महामारी के दौरान खतरा बना हुआ है। राज्य के COVID-19 कमांडर जेरुइन वीमर का कहना है कि विक्टोरिया के वेस्ट मेलबर्न में डेल्टा COVID-19 के प्रकोप में कोई और सक्रिय मामला नहीं बचा है, लेकिन मार्टिन फोले का कहना है कि सीमा प्रतिबंधों के स्तर से पता चलता है कि खतरा कितना गंभीर है और विक्टोरिया के लोगों की दृढ़ता से रक्षा करने की आवश्यकता है।
We cannot take this invisible threat lightly and we cannot take chances with the Delta variant in particular spreading across our state.
विक्टोरिया में आज कोई भी नया मामला नहीं आया है। विक्टोरियन प्रीमियर डेनियल एंड्रयूज ने विस्तारित अवधि से वापस आने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। श्री एंड्रयूज 3 महीने से अधिक समय के बाद आज सुबह काम पर लौटे। गिरने के बाद उनकी रीढ़ की हड्डी और कई पसलियां टूट गई थीं। उनका कहना है कि उनकी रीढ़ की हड्डी अनिवार्य रूप से ठीक हो गई है, लेकिन उनकी पसलियों को ठीक होने में 3 या इसी तरह के महीने लगेंगे।
Kath and the kids, I want to thank all my medical team, I want to thank every Victorian who sent me cards and notes and best wishes, and I definitely want to thank, and most importantly in many ways, I want to thank the Deputy Premier James Molino, who's done an outstanding job. To him, to Megan, to his kids, they wouldn't have expected that they would be spending these last nearly 4 months doing this work, so I'm very grateful to them and all the colleagues.
और भारत में जम्मू में एयरफोर्स बेस पर हमले के 24 घंटे के भीतर ही हमलावरों ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में स्पेशल पुलिस अधिकारी और उसकी पत्नी की हत्या कर दी। एनडीटीवी से मिले समाचार के अनुसार कल रविवार रात को हमलावर एसपीओ के घर में घुसे और उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। पुलिस के अनुसार हमले में अवंतीपुरा के फयाज अहमद और उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है, जबकि गंभीर रूप से उनकी घायल बेटी का इलाज चल रहा है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और हमलावरों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जम्मू वायुसेना स्टेशन पर रविवार सुबह ड्रोन से किए गए 2 धमाकों के मामले में पाकिस्तानी आतंकी संगठनों को जिम्मेदार माना जा रहा है और इसे किसी भी भारतीय सैन्य ठिकाने पर पहला ड्रोन हमला माना जा रहा है। और भारत में आज सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश में COVID-19 के 46,148 नए मामले सामने आए हैं। और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की. ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमेरिका के लगभग 76 सेंट और भारत के 56.35 रुपये के बराबर है. और खेल समाचारों में, फुटबॉल यूरोपियन चैंपियनशिप में थॉर्गन हैजर्ड के पहले हाफ के गोल से बेल्जियम ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है. बेल्जियम ने यूरोपियन चैंपियन के 16वें दौर के खिताबी जीत हासिल करने वाले पुर्तगाल को 1-0 से हराया है. और अब बात मौसम की. मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी मंगलवार को पर्थ में बौछारें रहेंगी. अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस. एडिलेड में मुख्यतः धूप रहेगी. अधिकतम तापमान 17 डिग्री, न्यूनतम 8 डिग्री. मेलबर्न में मुख्यतः धूप रहेगी. अधिकतम तापमान 16 डिग्री, न्यूनतम 5 डिग्री. होबार्ट में भी मुख्यतः धूप रहेगी. अधिकतम तापमान 12 डिग्री, न्यूनतम 4 डिग्री. कैनबरा में सुबह के समय धुंध, आंशिक रूप से बादल. अधिकतम तापमान 14 डिग्री और न्यूनतम -1 डिग्री. सिडनी में बौछारें. अधिकतम तापमान 18 डिग्री, न्यूनतम 11 डिग्री. ब्रिस्बेन में एक दो बौछारें. अधिकतम तापमान 21 डिग्री, न्यूनतम 11 डिग्री. और डार्विन में धूप रहेगी. अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस. और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए.
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद. हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं.